नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। ईरान ने दी चेतावनी, यदि अमेरिका ने देश के बिजली संयंत्रों पर हमले किए तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची आज प्रकाशित करेगा। सरकार महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का सातवां चरण आज आरंभ करेगी और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बुधवार से छत्तीसगढ़ में शुरू होंगे। रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा मेजबानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष की स्थिति लगातार बदल रही है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें वर्तमान स्थिति और मौजूदा तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें जिससे नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। उन्होंने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी कहा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी न हो। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों के समूह के गठन का निर्देश दिया जो समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ समर्पित रूप से काम करेगा। उन्होंने क्षेत्रीय समूहों को सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श से काम करने का भी निर्देश दिया।
बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने वैश्विक स्थिति और सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा अब तक किए गए तथा प्रस्तावित राहत उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित प्रभाव और उससे निपटने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की गई। देश में समग्र वृहद आर्थिक परिदृश्य और प्रस्तावित उपायों पर भी चर्चा हुई। खाद्य पदार्थों, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा सहित आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का विस्तृत आकलन किया गया। बैठक में रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक आयात के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई तथा भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में निर्यात के नए गंतव्य विकसित किए जाएंगे। विभिन्न मंत्रालयों के प्रस्तावित उपायों को सभी संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद तैयार और लागू किया जाएगा। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया से आने जाने वाली कुल 30 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी, लेकिन कई मार्गों पर सेवाएं सीमित रहेंगी। दोनों एयरलाइंस जेद्दा रूट पर निर्धारित सेवाएं जारी रखेंगी। भारत और जेद्दा के बीच कुल 10 उड़ानें संचालित होंगी, जिनमें एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक एक वापसी उड़ान शामिल हैं। एयर इंडिया संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से कुल 12 गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। उत्तरी अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रों से आने जाने वाली एयर इंडिया की सभी उड़ानें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करता है तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर देगा और जलमार्ग को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि ईरान के बिजली संयंत्रों का दोबारा निर्माण नहीं हो जाता।
ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 74वें चरण की घोषणा की है। इस चरण में शक्तिशाली मिसाइल के इस्तेमाल और इसराइल में सैन्य तथा सुरक्षा ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर चेतावनी में कहा कि अगर उसके बिजली संयंत्रों पर हमला होता है तो पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, ऊर्जा केंद्रों और तेल सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच ब्रिटेन में ईरान के राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के दुश्मनों को छोड़कर सभी देशों के लिए खुला रहेगा और ईरान के साथ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के बाद जहाजों की सुरक्षित आवाजाही हो सकेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
उधर संयुक्त अरब अमीरात की वायु सुरक्षा प्रणालियों ने कल ईरान से दागी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइलों और 25 ड्रोन को मार गिराया, जिनकी आवाज कई शहरी इलाकों में सुनी गई। एक अन्य घटना में ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने बताया कि शारजा तट से लगभग 15 समुद्री मील दूर एक मालवाहक पोत के पास मिसाइल विस्फोट हुआ। लेबनान में इसराइल सेना ने हवाई और जमीनी अभियान तेज कर दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान 9 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी। उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। असम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के कई उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे।
असम में उम्मीदवार आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। भाजपा और विपक्षी दलों के कोई दिग्गज उम्मीदवार आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने जालुकबारी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वोटों की जांच कल होगी, जबकि उम्मीदवार 26 मार्च तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को होगी। अब तक कुल 116 उम्मीदवारों ने 219 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अमीनुल हजदार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
केरलम विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। एक रिपोर्ट।
केरलम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन जमा करने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी। पर्चों की जांच कल की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए अब तक कुल 341 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इसमें थी एम्पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची आज प्रकाशित करेगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस सूची में उन मतदाताओं के नाम होंगे जिनके दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन हो चुका है और जो निर्णय सूची में लंबित हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 7वां चरण आरंभ करेंगे। इस चरण में खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस के तहत कई राज्यों में 19 खंडों की नीलामी होगी। इनमें खनिजों की विविध श्रृंखला शामिल है, जो स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकी, उर्वरकों और रणनीतिक उद्योगों जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इन्हें 1931 में 23 मार्च को लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी दी गई थी। तीनों क्रांतिकारियों पर 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था।
बरतानवी हुकूमत ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निर्धारित तिथि से एक दिन पहले फांसी देने के बाद उनके शवों को गुप्त रूप से फिरोजपुर के हुसैनीवाला में सतलुज नदी के तट पर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया था। हुसैनीवाला में स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक इन तीनों शहीदों की अदम्य क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है। सीमा सुरक्षा बल पंजाब ने अपनी हीरक जयंती समारोह के हिस्से के रूप में एक अनोखी पहल करते हुए कल फिरोजपुर हुसैनीवाला सीमा मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन का उद्देश्य इन तीनों महान क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देना था। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने भी फिरोजपुर कैंट से हुसैनीवाला तक जाने के लिए 6 जोड़ी विशेष शहीदी मेला रेलगाड़ियां शुरू की हैं। देश के लिए इन वीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने हेतु शहीद भगत सिंह के पैतृक गाँव खटखड़ कला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बुधवार से छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहे हैं। राज्य सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग ने बताया कि 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में ये खेल आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
धन्यवाद जागृति। पश्चिम एशिया संघर्ष पर मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक, राजस्थान पत्रिका सहित आज सभी अखबारों की सुर्खी है। राहत शीर्षक से पत्र ने लिखा है, अमेरिका से आया गैस टैंकर, मंत्रियों का समूह रखेगा हालात पर नजर। हिंदुस्तान के अनुसार जमाखोरों पर सरकार सख्त, निगरानी के लिए मंत्रियों सचिवों का विशेष समूह गठित करने का निर्णय। लोकसत्य की सुर्खी है, अमेरिका से एलपीजी और रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप। दैनिक जागरण ने लिखा है, ट्रंप बोले हुर्मुज खोलो वरना करेंगे बत्ती गुल, ईरान ने दी चेतावनी, पानी के लिए तरसा देंगे। दैनिक भास्कर की मंडे मेगा स्टोरी है, युद्ध के बीच तेल गैस से ईरान की रिकॉर्ड कमाई, खाड़ी देशों का 70% उत्पादन ठप। जनसत्ता ने ट्रंप की चेतावनी दी है, हुर्मुज 48 घंटे में खोले ईरान, नहीं तो ऊर्जा संयंत्र नेस्त नाबूद कर देंगे। ईरान ने कहा, मध्य पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को बर्बाद कर देंगे। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर खतरनाक मोड़ शीर्षक से पश्चिम एशिया के हालातों का विश्लेषण दिया है। ट्रंप की हुर्मुज मार्ग को खोलने की चेतावनी को खारिज करते हुए ईरान ने इसराइल पर हमलों का जो नया दौर शुरू किया है, उससे पश्चिम एशियाई संकट एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। युद्धरत पक्षों को समझना होगा कि शक्ति प्रदर्शन की होड़ में नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा दिन तक सरकार प्रमुख रहने वाले नेता, लिखता है पंजाब केसरी। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार प्रमुख के रूप में 8,931 दिन पूरे कर उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। नवभारत टाइम्स ने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट को प्रमुखता दी है। शिक्षा का लेवल सुधरा मगर नहीं मिल रही नौकरी, भारत में 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी बढ़ी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा, नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। ईरान ने दी चेतावनी, यदि अमेरिका ने देश के बिजली संयंत्रों पर हमले किए तो होर्मोज जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। निर्वाचन आयोग SIR प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची आज प्रकाशित करेगा। सरकार महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 7वां चरण आज आरंभ करेगी और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बुधवार से छत्तीसगढ़ में शुरू होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।